पृष्ठ संख्या 97। किंतु उनके विचारों से चकबंदी से महत्वपूर्ण जोत का बृहदीकरण है। हमारी खेती मुनाफे लायक हो 30 एकड़ के आसपास की जोत की सीमा होनी चाहिए। 30 से 50 बीघा के बीच में एक कुआं घर हो, यही आदर्श मिल्कियत खेती की थी और इसका प्रयोग उन्होंने बड़ौदा राज्य में भी किया था। उन्होंने एक विद्वान को उद्धृत किया, खेती इतनी हो कि उसके मालिक को गुजर बसर लायक पर्याप्त अन्न की व्यवस्था करें और उक्त मालिक अपने परिवार के उपभोग की आवश्यक चीजों का निस्तारण भी उसी उपज से कर सके। उन्होंने जमीन की मिल्कियत के बारे में तमाम विद्वानों की राय की परीक्षा की और कहा कि कभी-कभी छोटी जोत भी लाभकर हो सकती है और बड़ी जोत भी बिना मुनाफे की हो सकती है। यह स्थिति जमीन की गुणवत्ता, उसमें लगने वाली लागत, उपज, उत्पादित वस्तु की बाजार में कीमत, उसमें लगे लोगों की मजदूरी दर, इसीलिए कभी किसी किसान की आवश्यकता और लागत कम हो सकती है और उसकी छोटी जोत भी मुनाफे लायक हो सकती है। कभी बड़ी जोत में ऐसे खर्चे हो सकते हैं, प्राकृतिक विपदा हो सकती है कि बड़ी जोत भी घाटे का सौदा हो जाए। हमारा भ्रष्ट सामाजिक अर्थशास्त्र भी कृषि की बुराइयों के लिए जिम्मेदार है। खेती पर ही हमारी पूरी निर्भरता खेती के आकार और उसके बिखराव के लिए जिम्मेदार है। कृषि के ऊपर बहुसंख्यक आबादी का रोजगार हेतु दबाव है, इसीलिए कृषि में रोजगार के लिए निर्भर सभी किसान अधिकांश समय काम पाने की जगह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, जिससे मूलतः देश का बोझा बढ़ता है और राष्ट्रीय पूंजी में कमी आती है। बड़े जोतों से भूमिहीन मजदूरों की सेवा बढ़ेगी, जो व्यक्तिगत रूप में दुखदाई और राष्ट्र के लिए दिक्कत तलब होगी। जब हम पूंजीगत कृषि प्रारंभ करेंगे, तो मौजूदा जितने लोग खेती में लगे हैं, उनकी संख्या घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, परंपरागत खेती में ज्यादा लोगों को खपाने की क्षमता है। खेती को यदि बड़ा नहीं कर सकते, तो इसे इकट्ठा करें, इससे कुछ तो समाधान संभव है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया खेती की जोत के विस्तारीकरण की प्रक्रिया को तेज करेगा। वह सब डिवीजन और आणविकीकरण के खिलाफ रुकावट बनेगा। किंतु केवल औद्योगिकरण से ही एकत्रीकरण नहीं हो जाएगा। खेती पर से मजदूर का बोझ कम करना होगा। बिखरी और छोटी खेती हमारी बुराइयों की जड़ है। इसके दुरुस्त करने का उपाय औद्योगीकरण है। बंबई विधान परिषद में समय समय पर उनके दिए हुए भाषणों से भी उनके आर्थिक मामलों में सोच का पता चलता है। 24 फरवरी 1957 को उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान से चाहे उसकी फसल दैवी आपदा से भले ही बर्बाद हो गई हो, भू राजस्व जबरन वसूल लिया जाता है, किंतु आयकर के बारे में ऐसा नियम लागू नहीं है। आयकर तो आमदनी होने पर ही दिया जाता है, इसीलिए भू राजस्व की यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कालांतर में समाजवादियों ने बिना मुनाफा खेती बारी से मालगुजारी माफी आंदोलन खड़ा किया। इसमें उक्त विचारों का भी योगदान रहा होगा। वे 21 फरवरी 1928 से 19 जुलाई 1938 तक बॉम्बे विधानसभा के सदस्य रहे और उस दौरान उन्होंने कई भाषण ऐसे किए हैं जिसमें कहा है कि कोई भी योग्य और निष्ठावान सरकार इस बात को नहीं कर सकती है कि वह गरीबों को सुख सुविधा इसीलिए नहीं पहुंचा रही है कि उसके पास संसाधनों का अभाव है और वह टैक्स लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकती। पृष्ठ संख्या 98। वस्तुतः यह सरकार का दायित्व है कि बेरोजगारों को बेकारी भत्ता दे, महिलाओं को गर्भावस्था की सुविधाएं, हम लोग तो भिखमंगों और बेगार कराने वालों तथा कुलियों के देश रूप में हैं। कोई बजट जो अमीरों को सुविधा तथा करोड़ों भूखों को भूखा रखने के लिए तैयार हो, वह गलत बजट है। उन्होंने 21 फरवरी 1929 को अपने भाषण में विधानसभा में कहा कि विद्युत का उपयोग अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किरासन तेल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे बंद कराना चाहिए तथा बिजली के उपभोग को सस्ता करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार को संपत्ति कर लगाने के खिलाफ चेताया और कहा कि इससे स्थानीय निकाय की बढ़ती विचारधारा को धक्का लगेगा। यह कर स्थानीय निकाय के पास रहना चाहिए। बंबई शहर के निवासियों पर 10% संपत्ति कर लग गया है, जिससे लोगों में काफी उत्तेजना है और वे आंदोलन करने वाले हैं। वे अब केवल निगम के ही खिलाफ नहीं, पूरी बंबई प्रदेश सरकार के खिलाफ बगावत को तैयार हैं। वे बिक्री कर के खिलाफ थे, साथ ही धर्मादा कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले घरों पर भवन टैक्स लगाने के खिलाफ थे। उन्होंने मद्य निषेध की वकालत करते हुए कहा कि 1919 में अमेरिका भी मद्य निषेध लागू कर चुका है, क्योंकि तब वहाँ 22.43 लीटर प्रति व्यक्ति शराब की खपत हो गई थी। पुरुषों में लगभग 14.3% लोग मद्यपान करते हैं और महिलाओं में भी यह 2% आदत पड़ रही है। इसे रोकना होगा। उन्होंने बंबई सरकार से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की पैरवी की। मुझे यदि एक मूर्ख और शालीन व्यक्ति मिले तो उसके गुनाह माफ किए जा सकते हैं, लेकिन कोई पढ़ा लिखा हो और पियक्कड़ हो तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने बार बार भू राजस्व समाप्त करने व सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करने की मांग की। उनके अनुसार उस समय बंबई में केवल 3 बच्चों में एक बच्चा स्कूल जाता था। 12 मार्च 1929 को विधानसभा में भाषण करते हुए उन्होंने शिक्षा के विस्तार के साथ शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता और मानव में सामाजिक गुणों का विकास करना बताया। उन्होंने शिक्षा जगत में पिछड़े वर्गों तथा दलितों की नगण्य संख्या पर काफी रोष जताया। उन्होंने अपने संपूर्ण चिंतन का आधार सामाजिक और संवैधानिक पहलू को बनाया। इसीलिए आर्थिक मामलों में किसी गहरे चिंतन को हम अलग से नहीं देखते, किंतु सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से समय समय पर फुटकर रूप में उन्होंने कुछ राय प्रकट की। वहीं उनके आर्थिक विषयों पर विचार माने जा सकते हैं। वे दलित वर्ग को ही सर्वहारा की श्रेणी में गिनते थे। वे लोकतंत्रवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पूरे पक्षधर थे, किंतु समानता के सिद्धांत में आड़े आने वाले मामलों पर वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर नहीं थे। वे मुक्त व्यापार के भी विरोधी थे। सितंबर 1943 में मजदूर संघ की एक बैठक में उन्होंने कहा, संविदा की स्वतंत्रता की राय ने लोकतंत्र को आदर्शवादी सिद्धांतों को नष्ट किया है। संसद ने आर्थिक असमानताओं को नज़रअंदाज कर गैर बराबरी बढ़ाने वाले संविदा की शर्तों को मंजूर किया। संसदीय लोकतंत्र स्वतंत्रता के नाम पर गरीब दलित पर होने वाले अन्याय को ही आगे बढ़ाया। वे राज्य के समाजवादी स्वरूप को उभारना चाहते थे। हमने संवैधानिक सोच वाले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया है। वे अपने देश में बिना तानाशाही के समाजवाद के इच्छुक थे। उन्होंने अपने संविधान सभा को दिए ज्ञापन में मूल उद्योगों का स्वामित्व और बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की पैरवी की है। वे कृषि के भी राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे और सरकार द्वारा सामूहिक खेती कराने की वकालत की। पृष्ठ संख्या 99। उनका प्रस्ताव था कि कृषि भी राज्य का उद्योग बने और न कोई जमींदार हो, न काश्तकार, न भूमिहीन मजदूर। आर्थिक शोषण के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने को उन्होंने मूल अधिकारों में समावेश करने की पैरवी की। समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले संरक्षण को भी वह मूल अधिकारों में शामिल करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मई 1947 में पत्र लिखकर कहा, हम सिद्धांत रूप में इन उपबंधों को संविधान में शामिल कर सकते हैं, यद्यपि वे मूल अधिकारों की परंपरागत कल्पना के अनुरूप नहीं है। आपका कहना ठीक है कि पुरानी मान्यताओं को व्यापक बनाकर आर्थिक लोकतंत्र को भी इसमें शामिल करना चाहिए। हमने संविधान की प्रस्तावना तैयार करते समय इसका उल्लेख किया है, किंतु इसे मूल अधिकारों में रखना ठीक नहीं है। हमारा इस समय प्रमुख उद्देश्य है देश में स्थिर और मजबूत सरकार, जो देश में गड़बड़ी फैलाने वालों से निपट सके और देश की प्रगतिशील शक्तियों को आगे बढ़ा सके। अगर हम इसी समय मूलभूत आर्थिक प्रश्नों को सुलझाने लगेंगे, तो संभव है गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों के हाथ मजबूत हों और हमें कुछ भी प्राप्त न हो। समय महत्वपूर्ण है। हमें इस समय समस्याओं को नहीं उलझाना चाहिए। इस तरह नेहरू ने बहुत बारीक ढंग से उनके आर्थिक मामलों को संविधान द्वारा सुलझाने के प्रयासों पर पर्दा डाल दिया। फिर भी उनके आर्थिक विचार भारत के लोकतांत्रिक समाजवाद में आस्था रखने वाले समाजवादियों से मेल खाते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाजवादी आंदोलन के नेताओं को भी भ्रम था कि नेहरू एक आर्थिक क्रांतिकारी और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को निष्ठापूर्वक स्वीकार करते हैं। संभवतः इसी खुशफहमी का शिकार होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने भी नेहरू को पत्र लिख दिया था, किंतु नेहरू द्वारा अंबेडकर को लिखा उक्त पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू द्वारा अपने को समाजवादी चित्रित करना वस्तुतः उनकी राजनैतिक रणनीति का हिस्सा था। उनकी कोई निष्ठा समाजवादी विचारों में नहीं थी, इसीलिए आज़ादी के बाद आर्थिक प्रश्नों पर उनकी प्रतिगामिता ने अंबेडकर सहित समाजवादी नेताओं को भी काफी दुखी किया। यह अलग बात है कि सहकारी खेती के डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव और नेहरू द्वारा भी बहुत बाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहारिक रूप में कितना उचित था। क्या सचमुच ऐसा करने से कृषि की तरक्की होती और वस्तुतः भूमिहीन मजदूर किसानों को भू स्वामित्व प्राप्त होता?